ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की आज होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के व्यापक प्रबंध किए हैं। आयोग ने रुझानों और परिणामों को बताने के लिए अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in पर समुचित व्यवस्था की है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में 28 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान कराया गया था। हरियाणा में 22 जिलों में आज होने वाली मतगणना के लिए 90 केंद्र बनाए गए हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। मतगणना से 1031 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है। ये सहायता मालदीव को वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। ये निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मोइज़ू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान लिया गया। दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग सहित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों का नवीनीकरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल टीबी रोगियों और उनके घर वालों के लिए पोषण सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की घोषणा की। टीबी को समाप्त करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री नड्डा ने कहा कि उपचार के दौरान सभी टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता मौजूदा 500 रूपये से दोगुनी करके 1000 रूपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18.5 से कम बीएमआई वाले सभी रोगियों के लिए अधिक ऊर्जा वाले आहार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। श्री नड्डा ने कहा कि सभी टीबी रोगियों को अब निक्षय पोषण योजना के तहत 3000 रूपये से 6000 रूपये तक की पोषण सहायता मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात भारतीय यूपीआई और यूएई की एएनआई को एक दूसरे से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच निर्बाध लेन देन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यूपीआई और एएनआई को जोड़ने से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे 30 लाख से अधिक भारतीयों को लाभ होगा। श्री गोयल ने मुंबई में भारत यूएई निवेश उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 12वीं बैठक के बाद ये जानकारी दी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माता देशों और 2047 तक शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल होना है। जर्मनी में हैम्बर्ग स्थिरता सम्मेलन में श्री जोशी ने भारत में हरित पोत परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में परिवर्तनकारी वृद्धि देखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज से लद्दाख के थोई से 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली निकाली जाएगी। इस कार रैली का समापन 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचने के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।